पेश है आज के मुख्य समाचार। फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलिया के कोविड 19 वैक्सीन अनुबंधों की करेगी समीक्षा। 1994 के राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण बमबारी के लिए डोमिनिक पेरी ठहरे दोषी। और खेल में विंबलडन के दूसरे दौर में से बाहर हो गई एंडी मरे और एमा राडुकानू। अब समाचार विस्तार से। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अस्पतालों में इलाज की आवश्यकता वाले कोविड से पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। वे लोगों से उनकी बूस्टर खुराक प्राप्त करने का आग्रह कर रहे हैं और कहते हैं कि चौथी खुराक बूस्टर दर बढ़ाने के लिए वृद्ध देखभाल क्षेत्र में और काम करना जरूरी है।
Only 64% of aged care residents eligible for their fourth dose have now got it. I want to see that rate increase dramatically. Again, the aged care sector has responded to the challenge of third dose boosters really well. 95% of aged care residents have had their third dose, but we need them to get that fourth dose, particularly as we see COVID cases to continue to increase as we have over the last few days.
बटलर ने घोषणा की है कि जेन हॉल्टन मॉरिसन सरकार के सभी वैक्सीन अनुबंधों की समीक्षा करेंगी। ऑस्ट्रेलिया जल्द ही महामारी की शुरुआत के 2 साल के भीतर अपनी 10,000वीं कोविड मौत दर्ज कर सकता है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में पिछले 24 घंटों में संयुक्त रूप से 40 और मौतें दर्ज की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 महीने से 5 साल की उम्र की बच्चों को कोविड के खिलाफ टीकाकरण करने में सक्षम होने के एक कदम करीब है। द थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर को चिकित्सा नियामक को एक आवेदन प्रस्तुत करने की जो इस युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए टीके का उपयोग का विस्तार करने की अनुमति देगा। अमेरिका ने हाल ही में 5 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों के लिए टीके को मंजूरी दी है। एक साउथ ऑस्ट्रेलियाई ड्रग तस्कर को एडिलेड में 1994 के राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण की बमबारी का दोषी ठहराया गया है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डोमिनिक पेरी को पार्सल बम भेजने का दोषी पाया गया है, जिसमें डिटेक्टिव सार्जेंट जेफरी बाउन और गंभीर रूप से घायल वकील पीटर वॉलिस की मौत हो गई थी। पेरी ने अपने परिवार के नशीली दवाओं के कारोबार में पुलिस अधिकारी की जांच का बदला लेने के लिए बम भेजा। बम विस्फोट के तुरंत बाद उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन 6 महीने बाद सबूतों की कमी के कारण उनके खिलाफ मामला हटा दिया गया। 65 वर्षीय पेरी को 2018 में फिर से गिरफ्तार किया गया था। जेफरी बाउन के बहनोई डेविड गॉटन ने सजा पर संतोष व्यक्त किया है।
This crime was and remains unprecedented in its violence against law enforcement in Australia. Despite the years which have passed since 1994, justice has been served today. This criminal act has remained at the forefront of our thoughts. Today's guilty verdict will allow us to move forward, knowing the individual who caused Jeffrey's death, amongst other serious crimes, has finally been convicted.
न्यू साउथ वेल्स के पुलिस मंत्री डेविड एलियट ने पूर्व डेप्यूटी प्रीमियर जॉन बारलारो से न्यूयॉर्क में अपनी नई नौकरी को छोड़ने का आह्वान किया है। श्री एलियट ने स्काई न्यूज को बताया कि नई नियुक्ति, जो अब 2 पूछताछ का विषय है, पेरोटे सरकार के लिए एक अनावश्यक व्याकुलता है, जो अपने नए बड़े खर्च वाले बजट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है।
I'd expect him to withdraw and do the honourable thing, because quite clearly when you become the story over an appointment, well then the appointment might be not in the best interest of the people of New South Wales. My very, very strong view is that he shouldn't be going to New York, and I'm pretty sure that that's the view of the majority of people in this state.
न्यू साउथ वेल्स में सार्वजनिक और कैथोलिक स्कूल के शिक्षकों और अधिनियम ने बेहतर वेतन और शर्तों की मांग करते हुए हड़ताल की कार्यवाही की है। न्यू साउथ वेल्स टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एंजेलो गैब्रियलातोस का कहना है कि ये सच है कि सार्वजनिक और कैथोलिक शिक्षक संघ दोनों हड़ताल के लिए सहमत है। ये दर्शाता है कि शिक्षकों की कमी और काम करने के बोझ के साथ समस्याएं कितनी गंभीर
है। This is only the second time in our history that the two unions have come together, and that speaks to the crisis in which we find ourselves.
न्यू साउथ वेल्स की शिक्षा मंत्री सारा मिशेल कहती हैं कि सरकार की 3% की वृद्धि की पेशकश अन्य राज्यों और क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है।
I'm really disappointed that union bosses have chosen to take this industrial action today. We know that all it does is really disrupt families and students right across New South Wales. We now have on the table the most generous pay offer when it comes to teachers anywhere in the country.
ऑस्ट्रेलिया के वृद्ध देखभाल प्रदाताओं का कहना है कि उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि पर्याप्त नहीं है क्योंकि वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ नहीं रहती है। स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि मुद्रास्फीति 5% से अधिक होने के बावजूद 2022 वित्तीय वर्ष के दौरान सब्सिडी में 1.7% की वृद्धि होगी। एज्ड एंड कम्युनिटी केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के पॉल सैडलर का कहना है कि सूचीकरण ऐसे समय में फंडिंग में प्रभावी कटौती दिखाता है जब इतने सारे प्रदाता संघर्ष कर रहे हैं।
I am certainly concerned that there will be an increase in the number of aged care services, both residential care and home care, that will struggle to continue when their costs outstrip the income that's available to them.
रूस ने नाटो द्वारा यूरोप की सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में पहचाने जाने पर प्रतिक्रिया दी है क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ये कहते हुए कि ये देश जारी स्थिति की बहुत बारीकी से निगरानी कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उनका उन दो यूरोपीय देशों के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है जैसा कि उनका यूक्रेन के साथ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेटो स्वीडन या फिनलैंड की सीमाओं के अंदर कोई इमारत बनाता है तो रूस उसी के अनुसार जवाब देगा।
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable.
रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने युद्धबंदियों के अपने सबसे बड़े आदान प्रदान को अंजाम दिया है जिससे 144 सैनिकों की रिहाई हुई है। कैदी की अदला बदली के बारे में रूस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सैनिकों की रिहाई की व्यवस्था की थी। रिहा किए गए कैदियों की टुकड़ी में वे सैनिक शामिल थे जिन्होंने मारियोपोल के स्टीलवर्क्स का बचाव किया था, साथ ही अजोव रेजिमेंट के 43 सदस्यों को सौंपा। एक नेशनल गार्ड यूनिट जिसे रूस एक खतरनाक दूरदराज बटालियन कहता है, माना जाता है कि सैकड़ों और यूक्रेनियन अभी भी पूर्वी यूक्रेन में रूस और उसके मॉस्को समर्थित अलगाववादी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनके सटीक ठिकाने का पता नहीं है। अमरीकी राज्य टेक्सस में जो एक ट्रक में 51 प्रवासी मृत पाए गए थे उनको सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने रोका था लेकिन निरीक्षण नहीं किया। टेक्सस के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने ट्रक के अंदर ना देखने की वजह पर सीमा सुरक्षा के लिए धन की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि राज्य के राजमार्गों पर अब अतिरिक्त चौकियां स्थापित की जा रही है, ये तर्क देने के बावजूद कि मौजूदा संसाधन मौजूदा चौकियों पर सभी ट्रकों के निरीक्षण को रोकते हैं।
As you all surely know, the truck passed through a border point checkpoint. It was not inspected. It was not inspected because the Border Patrol does not have the resources to be able to inspect all of the trucks. And as a result, the Border Patrol did not have the capability of saving those lives.
और अब खबरें भारत से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे साथी विधायकों से मुलाकात करेंगे, साथ में वे गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया तो सबकी निगाहें बीजेपी और बागियों के रुख पर टिक गईं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर भारत में कोविड 19 मामलों में 29.7% की उछाल आई है। पिछले 24 घंटों में 18,819 नए कोविड 19 के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड 19 से 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 69 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.28 रुपये हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। टेनिस में स्थानीय ब्रिटेन की पसंदीदा एंडी मरे और एमा राडुकानू दोनों दूसरे दौर में विंबलडन से बाहर हो गई हैं। मरे ने जॉन इज़नर को कड़ी टक्कर दी, जिन्होंने अपने मैच के दौरान 36 एसेस लगाए। एमा राडुकानू को कैरोलिन गार्सिया ने फिटनेस के लिए संघर्ष करने के बाद सीधे सेटों में हराया। मैच के बाद की टिप्पणियों में उन्होंने कहा,
Obviously it's tough to lose any match, but I think that Caroline played a great match. I mean, she is a great player and I struggled to find a way through her today. But it's okay because coming into this, I didn't really have many expectations of myself and playing on center court again was again a really positive experience for me.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री रहेगा। सिडनी में बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। डार्विन में बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।